शास्त्रों में एक कथा आती है। महाभारत में लिखा है, तुलाधार नाम का एक वैश्य था। उसके पास एक बार जाजली ऋषि आए। जाजली ऋषि ने समुद्र के किनारे बड़ी तपस्या की थी। तपस्या के समय में उसके मस्तक पर पक्षियों ने घोंसला बना दिया बाड़ों में। उनको यह मालूम भी था कि मेरे मस्तिष्क पर घोंसला बना दिया है, पर वो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं किया, ठूठ की तरह खड़े रहते थे। न खाना, न पीना, न सोना, कुछ नहीं। पक्षियों के बच्चों ने अंडे दे दिए, फिर वो पक्षी उड़ के चले गए और जो अंडे थे वो पैदा हो गए। वो पक्षी हो गए तो वो भी चले गए, फिर उनके अंडा रह गए। ऐसे पक्षियों की पीढ़ियां बीत गई। वहां एक बार की बात है, जो अंतिम पक्षियों का वहां टिकाव था, उन पक्षियों का जोड़ा बहुत समय तक यहां इसमें रहा, घोंसले में, माथे पर जो बाड़ों में घोंसला। वे रात को घोंसले में आ जाते और सुबह वो चुग्गा पानी के लिए निकल जाते। एक बार की बात है, वो पक्षी उड़ गए और एक महीने तक लौट कर नहीं आए। जाजली ने सोचा कि उन्होंने अब कहीं दूसरी जगह घोंसला बना लिया होगा, उड़ गए होंगे, इसलिए इस बोझे को हटा दो। तो सिर का बोझा उन्होंने हटा दिया, सब वो फेंक दिए उठा करके। उसके बाद उनके मन में एक अहंकार आया कि देखो, इस संसार में मेरे समान कौन तपस्या कर सकता है कि जिसके जटाओं में पक्षी बैठ बैठ करके चले गए, तब भी हम उन पक्षियों को हटाए नहीं, ऐसी कौन तपस्या कर सकता है। ऐसे मन में अहंकार आया। इतने में आकाशवाणी हुई, ए जाजली, किस बात का अभिमान करता है? एक तुलाधार नाम का वैश्य है, उसकी जो तपस्या है उसके सामने तुम्हारी तपस्या कुछ नहीं है। जाजली ने सोचा कि अरे, मेरे से ज्यादा किसी तुलाधार नाम के वैश्य ने तपस्या की है, तो चलो तुलाधार वैश्य के पास चलते। ये कौन है, कहां रहता है? तो जाजली पूछते पाछते गांवों में इधर उधर शहरों में घूमते आए तो पता चला कि तुलाधार वैश्य है, वो अमुक जगह रहता है। उसके पास आए, वो तो दुकान बना रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, सौदा बेच रहा है। ऋषि आकर खड़े हो गए, आश्चर्य करते हैं कि तुम नमक बेचता है? नमक बेचना तो बढ़िया बात नहीं, ये तेल बेचता है, तेल का व्यापार भी अच्छा नहीं। चीनी है, घी है, आटा है, ये तो बस ये ले रहा है, दे रहा है, रस भी बेच रहा है। रस का मतलब दूध, दही, छाछ, मदिरा और नहीं बेचता। ये देख करके जाजली ने सोचा कि अरे, आकाशवाणी में कोई गलती हो गई। जैसा आकाशवाणी ने कहा वैसा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, और मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तुलाधार वेश्य के लिए ही कहा था। अब ये तुलाधार यही है कि और कोई तपस्वी है, इसमें तो भेद हो सकता है, पर आकाशवाणी ने नाम तो यही लिया था। तब वो जाने लगे जाजली कोई और ही कोई होगा। देखो माता में बहने, इधर आ जाना फिर। और जागे तो जाजली ने विचार किया कि यही तुलाधार है कि और कोई तुलाधार है, मुझे कहीं भ्रम तो नहीं हो गया, ऐसा विचार करके वो वहां से जाने लगा। तो तुलाधार वेश्य जो दुकान में बैठा हुआ था उसने देखा कि तो वापिस जा रहे हैं, तो आसन से उठा, महात्मा जी के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया कि महाराज, समुद्र के किनारे आपने जिस तुलाधार वेश्य का नाम सुना था, आकाशवाणी ने आपको सुनाया था, वो महाराज तुलाधार वेश्य मैं ही हूं। तो आश्चर्य हुआ कि अरे इसको कैसे पता लग गया, मैंने जो तपस्या की वो तो मैं ही जानता हूं, इसको कैसे पता चला। फिर बोले, अरे बनिया, जब तू रस बेचता है, क्रय विक्रय करता है, तब तुम्हें इस प्रकार का ज्ञान कैसे हुआ? हम महात्माओं की तपस्या का ज्ञान तुमको ये सामान सौदा करते हुए कैसे हो गया? उसने कहा, महाराज मैं सत्य बोलता हूं, सबके साथ सम व्यवहार करता हूं, चाहे कोई बुद्धिमान आ जाए, चाहे कोई मूर्ख आ जाए, चाहे कोई बालक आ जाए, चाहे कोई युवा आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे भाव में और मोल में, बोल में, तोल में कहीं भी फर्क नहीं पड़ता है। कई कई ऐसे लोग आते हैं जिनको रुपया गिनना नहीं आता, वो आके कहते हैं कि लो साहब जितना रुपया है उतना ले जाओ, तो मैं जितना पैसा होता है उतना वापस दे देता हूं, किसी की अज्ञानता का दुरुपयोग नहीं करता हूं। इतना ही नहीं, सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान इसमें भी मैं विचलित नहीं होता हूं। और गीता में जो गुणातीत के बारे में और भक्तों के लक्षणों के बारे में लिखा है उसके अनुसार भी चलने की चेष्टा करता हूं। इस कारण से मुझे ये थोड़ा ज्ञान हो गया। तो उस तुलाधार वेश्य का जो क्रय विक्रय था वो त्याग पूर्वक था, संसार के कल्याण के लिए था, रुपयों के लिए स्वार्थ बुद्धि को लेकर नहीं था, इसलिए वो व्यापार को लेकर भी बड़ा प्रसन्न था। जागरी ने कहा, अरे तुलाधार, तुम बात बड़ी बड़ी करते हो लेकिन अभी भी मेरे मन से संशय नहीं निकला है, तुम यहां कहां दुकान पर बैठे हुए रात दिन रुपये के लेन देन में पड़े हो? ये तो कोई तपस्या का रूप नहीं दिखता है, कल्याण का रूप नहीं दिखता है। तुलाधार बोले कि महाराज, मेरे कार्य की ओर आप देख रहे हैं, कार्य की तरफ मत देखिए, मेरे भाव की तरफ देखिए। किंतु खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझ करके सत्य से प्रतीत होने वाले मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। वे तो यज्ञों में पशु हिंसा तक करते हैं जो वेद विरुद्ध है। वेदों में पशु हिंसा करना लिखा ही नहीं है, इन ब्राह्मणों ने इस प्रकार की बात चला दी। उसके बाद तुलाधार आकाश में उड़ते हुए उन पक्षियों को इशारा करके बोले, हे जाजले, ये वे पक्षी हैं जिन्होंने तुम्हारे घोंसले पर, तुम्हारे मस्तक पर घोंसला बनाया था, बुलाइए, आप इनको बुलाइए जिससे वे आपके मस्तक पर आकर अपने घोंसले में बैठ जाए। उन्होंने पक्षियों को बुलाने का संकेत किया, तत्काल वे पक्षी आए और उनके सिर पर बैठ गए और उन्होंने मनुष्य के समान स्पष्ट वाणी में तुलाधार द्वारा कहे हुए धर्मों का वर्णन किया। तब जागरी ने तुलाधार से कहा, तुम्हारे वचनों की शक्ति को देखकर तुम्हारे में मेरी श्रद्धा तो हो गई है। देखो ये पक्षी भी तुम्हारी बात मानते हैं। इसके बाद कई प्रकार की बातें सुनकर के जागली तुलाधार वेश्य के यहां से चले गए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि तुलाधार वेश्य एक अलौकिक शक्ति थी, तुलाधार वेश्य की एक अलौकिक शक्ति थी, एक प्रकार से वो सांसारिक प्रभाव है। आध्यात्मिक विषय का प्रभाव तो और भी उच्च कोटि का है, क्योंकि उससे दूसरे का कल्याण हो जाता है। यह कहकर मैंने ये बताया कि महापुरुषों की शक्ति के प्रभाव, शाप देने, वरदान देने, आशीर्वाद देने की कथा तो शास्त्रों में बहुत आई है। उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, भागवत आदि में बहुत से उदाहरण है, शाप दिया और वरदान दिया। परंतु एक बात ध्यान रखो कि जो व्यवहार में पूर्ण सत्यवादी होता है, उसकी वाणी में भी वो शक्ति आ जाती है जो साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं। दूसरी शक्ति जो श्रोता के विषय में है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे पांडवों की माता कुंती ने आदेश दिया कि तुम ये जो आज भिक्षा लाए हो, पांचों भाई इसको बांट लो, तो भीमसेन ने कहा कि माँ, आज की भिक्षा कोई वस्तु नहीं है, एक स्त्री लाए है। माँ ने कहा तूने स्त्री का नाम तो लिया नहीं, केवल खाने पीने की बात वस्तु का संकेत किया भिक्षा। माँ भिक्षा लाए यही तो कहा। कुंती ने फिर सोचा कि बहुत मुश्किल की बात है, मैंने कह तो दिया कि तुम पांचों इसको बांट लो, पर ये बात जीवन में कैसे आएगी? हमारा वचन का सत्य होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये बात ही मैंने अटपटी कही है, मेरे समझ में ही और बात थी और बात ही कुछ और निकली। इस बात को सत्य करना अब मेरे हाथ की बात नहीं है, अब ये पांडवों के हाथ की बात है। युधिष्ठिर ने कहा मां से बढ़कर संसार में कौन है? और मां का आदेश यदि पालन नहीं हुआ तो फिर सब धर्म का पालन व्यर्थ है। और हम पांचों मिलकर के आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम पांचों व्यक्ति इसके साथ विवाह करेंगे। बेटा ये बात तो शास्त्र विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है, शास्त्र कैसे कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि पांचों भाइयों ने अलग अलग इसके साथ विवाह किया? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि माँ हमें ये नहीं देखना, हमें आपकी बात का आदर करना है। तो युधिष्ठिर महाराज ने माँ के वचनों का आदर किया, उनका पालन किया। कैसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि द्रौपदी ने पांचों के साथ विवाह किया, फिर भी द्रौपदी दिव्या की दिव्या ही रही। ये दिव्यता कुंती माता के वचनों के प्रभाव से आई। तो माता के वचनों का, महात्माओं के वचनों का जहां तक जिसने जितना हो सका पालन किया, उसमें वो शक्ति आ गई। जाबाली के पुत्र सत्यकाम ने गुरु की आज्ञा का पालन करके ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। कहे लड़की नहीं, अब तो शिवजी ने कह दिया तो लड़का ही है। तो अपनी लड़की को लड़का मान करके दूसरे राजा की लड़की के साथ विवाह कर दिया, और फिर वहां जाकर के पोल खुल गई कि ये तो लड़की है, ये भी लड़की, ये भी लड़की, दोनों में लड़ाई की नौबत आ गई। फिर भगवान शंकर ने जाकर उस लड़की वाले से कहा कि मेरे कहने से शादी की है, मैं वरदान देता हूं कि जो द्रुपद की लड़की तुम समझ रहे हो ये लड़का ही होगा, लड़का ही हुआ, सफलता होगी। ये वचन पालन की बात है। धौम्य मुनि के शिष्य आरुणी थे, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, तो गुरु की आज्ञा का पालन किया तो सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ऐसे शास्त्रों में बहुत उदाहरण मिलते हैं। शास्त्रों और महात्माओं की आज्ञा का पालन हम लोगों को करना चाहिए और उसी अनुसार चलना चाहिए। अब आप हमारे पर बात सोचो, हमारे में यदि शक्ति होती तो आज सैकड़ों हजारों आदमी तैयार हो गए होते, भगवत प्राप्त पुरुषों के बराबर हो जाते या भगवान की प्राप्ति हम करा देते। परंतु हम जो कहते हैं उस बात पर आप ध्यान दो, हम प्रार्थना के रूप में कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, विनय के रूप में कहते हैं, उपदेश आदेश के रूप में नहीं बोलते, गुरु शिष्य के भाव से नहीं बोलते, स्वामी सेवक से भाव से नहीं बोलते, हम तो मित्र भाव से बोलते हैं। मित्र भाव से भी कहने का एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है कि हम स्वामी के रूप में, गुरु के रूप में नहीं कहते हैं, क्योंकि एक तो हमारा ऐसा बनने का अधिकार नहीं है, कारण कि मैं तो एक वैश्य हूं और गृहस्थी आदमी हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे में कोई अलौकिक शक्ति भी नहीं है जैसी वेद व्यास जी में थी, संजय को दिव्य दृष्टि दी जिससे उनका मन इंद्रियां सब दिव्य हो गए, और जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को दी तो विराट रूप देखने लग गए, एवं 15 वर्ष बाद 18 अक्षुणी सेना को भी उसी रूप में प्रकट कर दिया वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने क्या किया कि जब ये धृतराष्ट्र जंगल में चले गए, वहां रहे अलग में, तब एक बार जो है धृतराष्ट्र के वहां 500 पांडव आए दर्शन करने के लिए। धृतराष्ट्र उनसे बड़े प्रेम से मिले। धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, जीवन में मेरे एक बहुत बड़ा भारी पछतावा रह गया। ये क्या रहा पिताजी? बेटा यही रहा कि मेरे बेटों ने तुमको बहुत कष्ट दिया, बड़ा पाप किया, तो तुम अपने मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करना, मेरे से भी भूल हो गई, अब तो ये जीवन का अंतिम पड़ाव है, तो मैं ये चाहता हूं कि अंतिम समय में सब प्रकार की भूलों को छोड़ दिया जाए, विस्मृत कर दिया जाए, भुला दिया जाए। तो युधिष्ठिर जी महाराज के आंखों में पानी आ गया, धृतराष्ट्र भी गदगद हो गए। उसी समय वेदव्यास जी आ गए। वेदव्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र मैंने तुमको पहले कितना समझाया था। धृतराष्ट्र चरणों में गिर गया, महाराज पुत्र मोह से मैं व्याकुल हो गया, मैं जानता हूं कि मेरे पुत्रों की बड़ी भारी दुर्गति हुई है, कितने राजा लोग मरे हैं, कितना क्या हुआ है, एक बार मुझे अपने पुत्रों को, अपनी सेना को और अपने मरे हुए को सबको एक बार आप मिला दो, ताकि मेरे जीवन में कोई पश्चाताप न रहे। तो वहां वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य शक्ति से दुर्योधन वगैरह को सबको दिखाया, हुआ सब अक्षौणी सेना जो साफ दिखाई दी। धृतराष्ट्र भी देखे, बेटा हमने तुमको पहले तो देखा नहीं। अब वो दुर्योधन आया और धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी के चरणों में प्रणाम किया, भीमसेन से खूब बातों बात मिला, अर्जुन से बड़े प्रेम से मिला, नकुल सहदेव का बड़ा प्यार किया और कहा, बड़े भाई साहब आप कैसे हैं? भीमसेन से कहा, भीमसेन तुम कैसे हो? तुम्हारे मन में मेरे प्रति बहुत नाराजगी थी, अब तो नहीं है ना? ऐसा धृतराष्ट्र ये दुर्योधन का व्यवहार देखा तो पांडव लोग गदगद हो गए। अब अर्जुन से भी बहुत बात लगा करके मिला कि अर्जुन तू है तो मुझसे छोटा, लेकिन तेरी शस्त्र विद्या से मैं बहुत प्रभावित था। कर्ण भी आया तो युधिष्ठिर महाराज कर्ण के चरणों में प्रणाम किए। इतना प्रेम का वातावरण, एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, पिछली बातों में हुई गलतियों को देखकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बहुत आनंद से मिले हैं। तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी से पूछा कि महाराज ये ऐसी क्या बात हो गई? तो वेदव्यास जी ने कहा कि देखो, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होकर के युद्ध किए और युद्ध के अंदर ये मरे ना, इस कारण से ये बड़े स्वस्थ और बड़े ठीक है। बाकी आपको मैंने ये दर्शन दिए, बार बार ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। मैंने दर्शन करवाए हैं, बार बार नहीं मिलेंगे। तो ये बात थी। तो 15 वर्ष के बाद भी 18 अक्षौणीय सेना को प्रकट किया। तो भाई हमारे में यदि ऐसी शक्ति होती, भगवान हमको शक्ति देकर के संसार के कल्याण के लिए भेजते, तो हम भी अपनी शक्ति से आप लोगों को लाभ पहुंचा देते। हमारा तो छोटे बड़े सभी के लिए यही निवेदन है कि जो हम बात बताएं उसको काम में ले, मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपको कुछ रहस्य की बात बताता हूं कि यदि हम लोग अधिकारी होते, सामर्थ्यवान होते, तो हम आपको गुरु शिष्य के संबंध से शिक्षा या आदेश देते, परंतु इसका नतीजा बहुत खराब होता। कारण कि यदि हम गुरु होते और आप शिष्य होते, यदि हमारी कही हुई बात का आप पालन नहीं करते, आज्ञा का पालन नहीं करते, तो आपका पतन होता। और हम एक मित्र के समान आपसे बात करते हैं, तो मित्रता का जहां नाता होता है, वहां एक मित्र की बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। यदि आप मेरी कही हुई बात को काम में नहीं लाएंगे, तो आप पाप के भागी नहीं होंगे, इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। ये बात हम जोर देकर के कह सकते हैं कि आपको इसमें पाप नहीं लगेगा। और यदि हम गुरु होते और वह संबंध आपके साथ जोड़ते तथा हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो आपका निश्चित पतन होता। और आज्ञा के पालन न करने में आपको कुछ भय भी लगता, अंदर ही अंदर डरते रहते। आज आप अंदर से कुछ डरते नहीं हो। संभव है कि यदि यह हमारे में शक्ति होती, तो हमारी वह शक्ति बलपूर्वक आपको यदि करवा भी लेती, तो जैसे राजा की आज्ञा बलवती होती है, राजा का हुक्म होता है, बलपूर्वक मानना ही पड़ता है, उसमें हेरा फेरी नहीं होती, तो ऐसी यदि होती तो फिर कल्याण का, भक्ति का आनंद नहीं मिलता। तो उस वक्ता की शक्ति पर निर्भर है कि कैसा वक्ता है, कैसी शक्ति है। किंतु ये बात साथ साथ में है कि जैसे उसके साथ में लाभ की बात है, ऐसे खतरे की भी बात होती है। यह बात नहीं मानने से खतरा ही खतरा है। यदि आप लोग मेरी बात काम में नहीं लाओगे, तो लाभ से वंचित रहोगे, कोई नया नुकसान नहीं होगा। हम आपको बाध्य नहीं करते हैं, आपको काम में लाने ही पड़ेगी, आपकी मर्जी है। आप लाओ तो आपकी बात है, ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते हो। लाने में लाभ है, नहीं लाने में कोई नया नुकसान नहीं है। किंतु यदि आपको भी ये किंतु यदि इसको भी नुकसान माने, तो जरूर है क्या कि लाभ से वंचित रह गए, यही नुकसान है। जैसे आपसे कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, आप सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य बोलने से जो लाभ होता है वो आपको नहीं मिलेगा। आपसे कहा जाए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्य के पालन से जो लाभ होता है वो नहीं मिलेगा। तो शास्त्र की बात है, उसके पालन से हमको प्रत्यक्ष लाभ होता है। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य ही शास्त्र विस्तरे ही। गीता की चीजें, गीता की शिक्षा दामी बहुत है। आत्मा के उद्धार के लिए गीता का विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। देखो ये वेदादि शास्त्र है, ये तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकला है, कमल है वो भगवान के नाभि से निकला है, लेकिन गीता साक्षात भगवान के मुख से निकली है। तो शास्त्र उपनिषद इत्यादि में पीढ़ियां पड़ती हैं, पर गीता में और भगवान में कोई पीढ़ी नहीं है। पहले भगवान और उसके बाद सीधी गीता। अतः भगवान के वचन कितने मूल्यवान हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं काम में लाऊं तो मुझे लाभ, आप काम में लाओ तो आपको लाभ। आप हम लोग बैठ करके जो ये भगवान की चर्चा करते हैं, ये भगवान की दृष्टि में हो रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है। इसमें आपको भी लाभ है, हमको भी लाभ है, और इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान की राधा जी की लीला देख रहा हूँ मैं, उसमें शामिल हूँ, भगवान की जो रास क्रीड़ा है उसमें मेरा प्रवेश है, उसके विषय में तो मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ। ये जो बात करने वाले लोग हैं ये धोखा देने की बात करते हैं। जो भगवान के विषय में कहना कि साहब मैं ध्यान लगाता हूँ, रास लीला देख रहा हूँ, मेरे सामने सब लीलाएं हो रही हैं, कोई क्या कि मैं तो इसको धोखा मानता हूँ, ऐसी बातों पर विश्वास मत करना। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे को कभी ऐसी घटना भी प्राप्त हुई है या नहीं, तो भी मैं कुछ भी नहीं कहूँ। जिसका मैं खुद निषेध करूँ, दम भी बतलाऊँ, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ? जो कहता है कि मुझे अनुभव हो गया वो दम्भी है, क्योंकि वेद में आया है, वेदों में कहा है कि जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वो ब्रह्म को समझा नहीं है। क्योंकि जान लेने के बाद फिर कहने की रुचि क्यों पैदा हुई? जब तुम ब्रह्म को जान गए तो कहने की कैसे रुचि पैदा हुई? कहने की रुचि नहीं होती। ना हम मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेदच, यो न तद्वेद तद्वेद यो न वेद इति वेद च। जो कहता है भाई क्या करूं, मुझे अभी ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ है, वो फिर भी ठीक है, उसको कुछ अनुभव हुआ है। पर जो ये कहता है कि मैं जानता हूं अहम मन्ये न सुवेद, वो अच्छी ढंग से नहीं जानता है। मुझे भगवान मिल गए, मैं भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं, भगवान में मेरा बड़ा प्रवेश है, ऐसी जहां बातें होती हैं वहां सब मामला गड़बड़ है। वास्तव में भगवत प्राप्ति है ही नहीं। जो ऐसा कहता है उसकी परीक्षा कर मैं कह सकता हूं कि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु जिसे वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हुई है उसके विषय में हम परीक्षा भी नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। ये बतलाना कठिन है, क्योंकि यह जो विशेषता है वह स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं। स्वसंवेद्य माने अपनी जानकारी में आने वाली, पर संवेद्य माने दूसरे जान सके। अरे मेरी भूख को तो मैं ही जानूंगा, मेरी तृप्ति को मैं ही जानूंगा, मैं भूखा हूं तो वैद्य लोग भी नहीं बता सकते कि तू तृप्त है, और यदि मैं तृप्त हूं तो कोई डॉक्टर वैद्य नहीं बता सकता कि तू भूखा है। मेरी भूख को तो मैं ही जानता हूं, ऐसे ये स्वयं के जानने की बात होती है। प्रायः संसार में जो लोग हैं वो दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए ऐसी बातें करते हैं, मोहित करने के लिए, ये वास्तव में अच्छे सच्चे पुरुष नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया में अधिकांश लोग मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा के किंकर हैं। लाखों करोड़ों में कोई ऐसा महापुरुष है जो मान बड़ाई प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझता है, जो संसार से विरक्त है, ऐश्वर्य को धूल के समान समझता है। ऐसा हजारों लाखों में कोई एक विरक्त पुरुष होता है, उन विरक्त पुरुषों में परमात्मा को तत्व से जानने वाला कोई एक ही होता है जो भगवत प्राप्त पुरुष होता है। विरक्तियों की व्याख्या की जा सकती है, पर भगवत प्राप्त पुरुष की व्याख्या यो मद भक्त समय प्रिय इस नाम से भगवान ने की है। 12वें अध्याय में 13वें से 19 श्लोक तक जो व्याख्या हुई उसको पढ़ करके आप देखो कि वह दूसरे के द्वारा पहचानने का विषय नहीं है। जब ये बात आती है कि ऐसा पुरुष कैसे मिले, तो हमारे में तो पहचानने की सामर्थ्य है नहीं। चाह है मिलने के लिए तो मिल सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यदि आपके हृदय में मिलने की तीव्र चाह ना है तो फिर आपको घर बैठे मिल सकते हैं। मिलने की तीव्र होनी इच्छा तीव्र होनी चाहिए, भगवान मिल सकते हैं, बस मिलने की इच्छा होनी चाहिए, खूब जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसे पुरुष भगवान की कृपा से भी अपने को मिल सकते हैं। बोले कि कृपा तो है ही, कृपा है तो सही, पर मानता कौन है? कृपा मानने से ही फल देती है, होने से नहीं होती, खास बात है। कृपा तो है लेकिन मानने से फल देती है, वो बिना माने फल नहीं देती। कृपा ही नहीं, भगवान स्वयं अपने को प्रकट कर दे और हम उनको भगवान नहीं माने तो भगवान का जो दर्शन का लाभ है वो कैसे होगा? नहीं होगा। भगवान के दर्शन हो जाए और फिर भी हम उनको अंदर से भगवान नहीं माने तो क्या फायदा दर्शन से? जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए, विराट रूप दिखाया दुर्योधन को, तो भगवान दुर्योधन उनको भगवान मानता ही नहीं था, तो दुर्योधन को विराट दर्शन का लाभ नहीं होता, तो बाजीगर है, बाजीगर कोई बाजीगर आ गया तो कैसे लाभ होगा? अर्जुन को लाभ हुआ क्योंकि उसकी श्रद्धा थी। हर एक बात मानने पर निर्भर है। प्रत्येक स्थिति में विकार नहीं होना चाहिए, हर परिस्थिति में निर्विकार रहना चाहिए। ऐसी निर्विकार अवस्था होनी चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, पर यह हो और ऐसा न हो यह नहीं होनी चाहिए। मतलब परिस्थिति तो ऐसी बने ऐसी न बने ये तो सोचते हैं लोग, अरे ऐसा करो कि हम कैसे इस परिस्थिति में निर्विकार कैसे रह सकते हैं, ये होनी चाहिए। अनुकूल में राग, प्रतिकूल में द्वेष, अनुकूल में हर्ष, प्रतिकूल में शोक, ये तो हृदय के गंदे से गंदे विकार हैं। जैसे शरीर के मलमूत्र विकार है, ऐसे ये हर्ष शोक राग द्वेष ये मन के विकार हैं। इन विकारों से रहित होने की एक कसौटी है, मान लो कोई क्रिया हो रही है उसमें एक भाव भगवत भाव, यदि भगवत भाव हो तो फिर नाना भेद हो ही नहीं सकता। जो नाना भेद है यही हमारे लिए बाधक है। जो एकता है वही समता है, जो समता है वही भगवान का स्वरूप है। आप चाहे एक ही भाव कहे, चाहे समता कहे, चाहे भगवान का स्वरूप कहे, एक ही चीज है। हम लोगों की दृष्टि में यह जो एकत्व भाव आता है, समता आती है, ये भगवान का प्रतिबिंब है, इसका आभास होता है, किंतु उससे अलग नहीं होता। चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा से अलग नहीं होता, सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य से अलग नहीं होता, सूर्य के साथ में ही छिप जाता है। महात्मा पुरुषों के अनुकूल बनने की बात चल रही थी, तो महात्माओं के अनुकूल बनना तो बड़ा सुगम है, महात्मा पुरुषों का मिलना बड़ा कठिन है। बड़ी कोई भगवान की कृपा हो तभी मिलते हैं, और मिल जाए तो पहचानना कठिन है। भगवान की कृपा से पहचानने में बात आ गई कि ये महात्मा है तो फिर उनकी बात माननी चाहिए, तो फिर कोई विलंब नहीं है। तो आशय यह कहने का कि महात्मा को जो महात्मा समझ लेता है, फिर एक प्रकार से उसमें महात्मा का भाव हो जाता है। गीता में जैसे कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। ऐसा ऐसा भक्त मुझे प्यारा लगता है, सब प्राणियों में द्वेष भाव किसी में भी द्वेष भाव नहीं रखता है, मित्रता रखता है, हेतु रहित दया रखता है, ममता का अभाव रखता है, अहंकार का अभाव रखता है, दूसरे के अपराध का बदला लेना नहीं चाहता है, सुख दुख में सम रहता है, जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसमें बड़ा ईश्वर का विधान समझ के बड़ा आनंद में रहता है, ऐसा जो भक्त होता है वो मुझे बहुत प्रिय है। जिसने मन को जीत लिया, बुद्धि को भगवान के अर्पित कर दिया, वो भगवान को बहुत प्रिय है। मन और बुद्धि को भगवान में अर्पण करने के समान आप भगवान को क्या अर्पण करेंगे? यह भाव यदि अपने हृदय में जागृत हो जाए तो समझना चाहिए कि हम महात्मा को समझ गए। समझने से ही वो महात्मा बन जाता है, वह जितना जानता है उतना ही उस भाव वाला बन सकता है, जितना जानता है उतना उस भाव वाला बन सकता है। साधारण जानने से उसमें साधारण गुण आते हैं, विशेष जानने से विशेष गुण आते हैं। जानने पर उसमें अलौकिक श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास होता है। श्रद्धा और विश्वास का ये प्रभाव है कि उसमें प्रविष्ट होकर श्रद्धा विश्वास अंकित हो जाती है। इस प्रकार वह श्रद्धा उसमें जम जाती है। कमी के कारण से ही कमी है, बाकी तत्व में कोई कमी नहीं है। श्रद्धा और अपना विश्वास जितना होता है उतना वह बात को पकड़ता है और धारण करता है। वह बात उसमें उसी प्रकार से घटने लगती है जैसे फोनोग्राम में जैसी आवाज भरी जाती है वैसी वह आवाज उसमें से निकलती है, और वैसे ही फोटो लेने वाले कैमरे में जैसा दृश्य होता है वैसा ही दृश्य वो पकड़ता है। इसी प्रकार से महात्मा में श्रद्धा होती है तो महात्मा के जो आचरण है उन आचरणों को वो हृदय से पकड़ लेता है, वो हृदय में अंकित हो जाता है और वैसे ही करने लगता है। फिर महात्मा के संकेत के अनुसार वो चेष्टा करता है, फिर महात्मा को भी अलग से कुछ कहना नहीं पड़ता है, महात्मा के संकेत के माफिक ही चेष्टा अपने आप होने लगती है। क्योंकि जो जो महात्मा में निष्ठा बनती जाती है त्यों त्यों महात्मा का महात्मापन उसमें उतरता आता है, उतरता चला आता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा के कारण उसके अंदर सब बातें जम जाती हैं और फिर अंदर से वैसी बातें पैदा होती हैं। वह अपने प्राणों का भी उतना आदर नहीं करता जितना वो महात्मा के वचनों का आदर करता है। ऐसा व्यक्ति आगे जाकर स्वयं महात्मा हो जाता है। सारे लेख का अंतिम सब तात्पर्य क्या है कि महात्मा बनने के लिए महात्माओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखकर उनका आचरण अपने हृदय में रखना चाहिए।